मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 8 जुलाई 2016 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने नौजवान दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, विशेष रूप से जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च 2017 बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं बरैया भद्रेश, आप भावनगर से हैं, गौरव कुमार नालंदा बिहार से हैं, और अर्चना कुमारी आप पटना बिहार से हैं। तो बरैया, गौरव और अर्चना, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी जो सितंबर अक्टूबर का बैच शुरू होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, और नेक्स्ट बैच जो नेक्स्ट ईयर 19 फरवरी से 15 दिनों के लिए होगा 2017 में, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। मुझे एक बात सूचित करने के लिए कहा गया है, और वह यह कि अभी जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कुछ सीट्स ₹1000 डिस्काउंट वाली रखी गई हैं, यानी कि कुछ सीट्स तक जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन्हें टोटल फीस में ₹1000 की छूट मिलेगी। तो मित्रों, ये एक सूचना है। फ्रेंड्स, दूसरी एक सूचना और भी है, और यह कि जो प्रीलिम्स के जो टेस्ट पेपर, जो मॉक टेस्ट एकेडमी अभी आपको प्रोवाइड करा रही है, उसका एक सेट 50 क्वेश्चंस का आपके लिए पहले प्रोवाइड किया गया था, अब फिर से कुछ क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। तो प्लीज आप उन टेस्ट को देखें, और एक विशेष अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहूंगा मित्रों, और वो ये कि कोशिश करें कि आप इस टेस्ट पेपर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फ्रेंड्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो कल्चर होना चाहिए, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं, वो होना ये चाहिए कि हम अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आपके नॉलेज उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, इसे तो मैं आरती के दीपक की तरह मानता हूं, कोई भी दीपक आप कह सकते हैं, आरती का दीपक मैं पवित्रता के लिहाज से कह रहा हूं। जैसे दीपक से आप अग्नि ले लीजिए, दो चार और दीपक उससे सटा करके जला लीजिए, तो जिस दीपक से आपने अग्नि ली है, उसके न तो प्रकाश में कोई फर्क पड़ता है और न अग्नि की मात्रा में कोई फर्क पड़ता है, बल्कि वो दूसरे दीपकों को जला करके झूमने लगता है। दोस्तों, ज्ञान का क्षेत्र लगभग लगभग इसी तरह का क्षेत्र होता है, इसलिए मैं जानता हूं कि कॉलेज तक की जो हम लोगों की पढ़ाई होती है, उसमें हम सब बड़ा छुपा छुपा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे नोट्स कोई न देख पाए, हम किस किताब से पढ़ाई कर रहे हैं ये कोई न जान पाए, पता नहीं ये बात कहां से हमारे दिमाग में बैठ गई है। लेकिन मित्रों, उसे अब यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ गए, और स्पेशली सिविल सर्विस में आ गए, तो प्लीज ब्रेक इट, इसे आप बिल्कुल तोड़ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा इन्हीं टेस्ट पेपर के लिए, कि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, राइट, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी सूझबूझ कर विचार पूर्वक बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल आपको अपने मूल्यांकन का अवसर उपलब्ध कराना नहीं है कि आप अपना मूल्यांकन कर लें कि 50 क्वेश्चंस आपने कितनी देर में सॉल्व किए, कितने सॉल्व किए, सही कितने हुए, और फिर आप अंदाजा लगा लें कि मेंस में आप के स्कोर कितने होंगे। ये एक छोटा सा पर्पज है दोस्तों, उससे भी बड़ा पर्पज जो इसके पीछे रहा है वह यह कि यह कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करने में भी आपकी मदद करे। यानी कि इसके जो कंटेंट हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रश्न के बाद जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, वो इस तरीके से किए गए हैं कि वो आपके लिए नॉलेज का एक माध्यम बन सके। वो अपने आप में नॉलेज है, वो अपने आप में कंटेंट है, इसलिए दोस्तों आप इसे सॉल्व करने के बाद किनारे न कर दें, इसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए और समय समय पर एक जैसे कि कोई नॉलेज कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है उस रूप में आप उसे देखें और उसे बीच बीच में पढ़ते भी जाएं। फ्रेंड्स, अब एक सूचना जो हर शुक्रवार की सूचना होती है वो ये कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। साथ ही आपको जो योजना और कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश एडिशन के एक एक आर्टिकल्स आपको पढ़ने को भी मिलेंगे, और जो हमारे फर्स्ट टू फोर्थ बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको जो स्पेशल ऑडियो आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो उन्हें एज इट इज मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सूचना थी। मित्रों, एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से और कहनी थी, वो ये कि कल मुझे मेल के जरिए पता लगा है कि जब मैं 2G स्पेक्ट्रम के बारे में बातें कर रहा था तो उस समय मैंने उस समय के जो मंत्री थे हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनका नाम लिया था तो मेरे मुंह से शायद डी राजा नाम निकल गया होगा। उनका जो एग्जैक्ट नेम है वो आर राजा है, तो डी को की जगह आप आर कर ले। उन स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। फ्रेंड्स, मेरे पास कल एक मेल आया है और उस मेल में एक इस बात का उल्लेख है कि एक स्टूडेंट हैं पीयूष अग्रवाल जो अमृतसर के हैं, हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सर, अभी मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी का देहांत हो गया और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अब दादी तो समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े बरगद के वृक्ष का उखड़ जाना जैसा लगता है अगर घर से कोई बुजुर्ग चला जाता है तो, जैसे कि बिल्कुल छाया हट गई हो, अचानक कुछ ऐसा महसूस होता है। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात लिखी मित्रों वो ये लिखी कि इसके बावजूद मैंने अपनी मानसिक मजबूती का प्रमाण दिया, मैं उतना नहीं रोया, उतना परेशान नहीं हुआ, जबकि वो मुझे बेहद प्यार करती थी और उनके जाने का मुझे बेहद दुख भी है। तो मित्रों, और आगे उन्होंने कुछ लिखा है उसमें कहा है कि ये खासकर जो मैं 15 दिन की क्लासेस में जो आया और जो मुझे ताकत मिली और जो कुछ भी मैंने सीखा समझा तो उसका मैंने इस्तेमाल किया और एक तरीके से मुझे अब ऐसा लगता है कि मानसिक मजबूती मुझे प्राप्त हो गई है। मित्रों, ये उनका मेल था। तो सबसे पहले तो पीयूष, मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी आपके दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये भी प्रार्थना हम सब करते हैं कि आप सबको उस दुख को सहन करने की शक्ति दें। मित्रों, आज मैं इसी माध्यम से थोड़ी सी मानसिक मजबूती की बात करूंगा। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि अगर आदमी है भी तो वो क्या है। अगर आप आदमी का विश्लेषण करें, एक आदमी से दूसरे आदमी में फर्क, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में फर्क, तो नो डाउट कि उसमें इंटेलिजेंसिया एक रोल प्ले करता है, फिजिकल कैपेसिटी का एक बहुत थोड़ा सा रोल उसका भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो मानसिक मजबूती का होता है, मस्तिष्क की क्वालिटी का भी नहीं। मस्तिष्क की क्वालिटी का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल बैलेंस नहीं है। और याद रखिए कि जब मैं मेंटल बैलेंस और मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं बैलेंस में ही स्ट्रेंथ निहित है। जैसे ही आप बैलेंस खोते हैं स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। बड़ी सिंपल सी चीज है। आप बहुत अच्छे मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, दोनों पैर से आप खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आपका बैलेंस गड़बड़ाया, खड़े होने का बैलेंस गड़बड़ाया, आप धाराशायी हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए, इसको आप अलग अलग मत मानिएगा। तो बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी मानसिक कमजोरी के कारण अपनी इंटेलिजेंसिया का कोई भी फायदा नहीं उठा सके। एक तरीके से कह लीजिए कि वो अपने जीवन में फेलियर से ही हुए। मित्रों, सवाल यह है कि ये मेंटल स्ट्रेंथ आएगी कैसे। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है, औषधि नहीं है जिसे आप खाएं और आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिल जाए। दिमागी कमजोरी, नर्व्स की प्रॉब्लम, न्यूरोटिक प्रॉब्लम जो होती है उनके लिए तो थोड़े बहुत न्यूरोबियन टाइप की मेडिसिंस हैं कि आप खा करके उन्हें उनका जो जैविक वीकनेस है उनकी वो उसको ठीक ठाक कर लें। लेकिन याद रखिए कि मानसिक कमजोरी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की कमजोरी है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपके विचारों में, भावनाओं में, तर्क में वहां कुछ न कुछ खामी है, उनको आप ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो बट नेचुरली कि सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। सही तरीके से जब विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो आप सही तरीके से निष्कर्ष नहीं हासिल कर पाएंगे, और जो आपका निष्कर्ष होगा उसी निष्कर्ष के प्रति आपका जो मस्तिष्क है वो प्रतिक्रिया करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने अभी की स्थिति को देखते हुए ये निष्कर्ष निकालने कि मैं तो सबसे दुखी व्यक्ति हूं, आप दुखी हो जाएंगे, और ये निष्कर्ष निकालने कि नहीं मैं तो सबसे सुखी व्यक्ति हूं, तो आप तुरंत सुखी हो जाएंगे। तो दिमाग तो आपके कंक्लूजन को लेकर के चलेगा, आपके निष्कर्ष को लेकर के चलेगा कि आपका दिमाग निकालता क्या है। और मित्रों सच पूछिए तो ये लो निष्कर्ष निकालने की जो क्षमता दिमाग की होती है ये डे टू डे लाइफ से आती है, अचानक नहीं आ जाती। मैं मित्रों रिपीट कर रहा हूं, डे टू डे लाइफ से आती है, अचानक नहीं आ जाती। मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि आप दैनिक जीवन में कितने कर्मठ हैं, कितने डिसीजंस ले रहे हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कितनी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, जूझ रहे हैं और सुलझा रहे हैं, इन सब से इस बात का निर्धारण होता है कि आपकी मानसिक मजबूती की स्थिति क्या है। याद रखिए जैसे दोस्तों की सुल्तान बनने के लिए यानी कि आपको पहलवान बनने के लिए अखाड़े में उतरना पड़ता है, कुश्ती लड़नी पड़ती है, उसी के अनुसार डाइट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मसल्स बिल्टअप करनी पड़ती है, तब शारीरिक मजबूती आती है। और याद रखिए कि शारीरिक मजबूती भी बिना मानसिक मजबूती के काम नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। मित्रों रोनाल्डो के साथ क्या हुआ जिसने संन्यास ले लिया और पूरा देश दुखी, और आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप अपने संन्यास की घोषणा को वापस लीजिए। मतलब वो एक असफल व्यक्ति, वो अपने आप को असफल मानते हैं जो उनके टीम को चैंपियन नहीं बना पाए, उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि कम बैक, जबकि वो अपने को कमजोर मान रहा है। क्या हुआ था रोनाल्डो पे कि वो पेनाल्टी किक को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, सिर्फ एक मानसिक चूक उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस विशेष क्षण में, क्षण विशेष में दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो गया, और जैसे दिमाग कमजोर हुआ निशाना कमजोर हो गया। तो दोस्तों जिंदगी के जितने भी क्षेत्र हैं वहां हर जगह तो मानसिक मजबूती ही काम आती है। दोस्तों आप उस मानसिक मजबूती किस तरह से आपको गवर्न करती है अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए खिलाड़ियों को देखिए, अगर मैच हो रहा है तो मैच हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मैच के दौरान खिलाड़ियों की तबीयत खराब नहीं होती होगी? होती है, लेकिन उनकी मानसिक ताकत इतनी ज्यादा होती है क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो खेलना ही है, यहां हम कैसे चांस ले सकते हैं, तो वो मानसिक मजबूती उनके उस बीमारी को ओवरकम कर देती है, पराजित कर देती है। दोस्तों याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने इतने एग्जाम दिए हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं, हम वैसे बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन परीक्षा के दिनों में हम कितने बीमार पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो मैं ये बात नहीं कहता, जैसे कि पहले के समय में अक्सर सुनने में आता था कि किसी को चेचक निकल गया, कुछ हो गया, तो अब वो एक अलग बात है, वो रेयरली तो देखिए सारी चीजें होती हैं क्योंकि सब चीज तो दिमाग नहीं है, अपना कुछ वैज्ञानिक जैविक कारण भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में सोचिए कि आप कितना बीमार पड़ते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, बल्कि अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, दिमागी स्तर पर लड़ते हैं, उसे संघर्ष करते हैं, और अपने दिमाग को बार बार ये आप हिंट देते हैं, संकेत देते हैं, और सच पूछे तो आदेश देते हैं कि नहीं, तुम मुझे अपने कब्जे में नहीं ले सकते, तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकते, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि मेरे एग्जाम नहीं हो जाते। और वह बीमार, वह बीमारी आपकी बात मानने के लिए विवश होता है, मजबूर होता है, वो आपके आदेश का पालन करता है। मित्रों, हर जगह आप देखिए एक बहुत ही साहसी व्यक्ति है और एक कमजोर व्यक्ति है, दोनों में क्या फर्क है? 5 सेकंड का फर्क है कि साहसी व्यक्ति 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक उस जगह और खड़ा रह जाता है, डरपोक व्यक्ति उससे पहले वहां से भाग जाता है। यही तो फर्क है। आपने बहुत से ऐसे सिंगर्स को देखा होगा, आप स्टेज परफॉर्म करने वाले को देखा होगा, लोग जाते हैं। यही मैंने भोपाल में देखा कि एक प्रोग्राम था और उसमें एक सिंगर आने वाले थे और उनकी तबीयत खराब थी, उनको फीवर था, मुंबई से वो आई, फीवर में आई, टैबलेट खाई और इसके बाद उन्होंने गाने का परफॉर्मेंस दिया और हम लोगों ने सुना और हम लोग सुनकर के दंग थे कि ये फीवर के बावजूद ये इस तरीके से गाना गा कैसे सकती हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता, लेकिन वो कर रही थी क्योंकि उन लोगों को चांस नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके। मित्रों, दिमागी ताकत को समझने की कोशिश कीजिए और प्लीज आप अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप दुनिया का सबसे बड़ा और कठिन काम कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली बस। दूसरे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते तो वो थोड़े से छोटा काम हो जाता, छोटा काम इन सेंस में वर्क उस हिसाब से नहीं कर रहा, मेहनत के हिसाब से कर रहा, ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के सारे काम छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी के सारे तौर तरीकों को बदल दीजिए, दोस्तों से मिलना बंद कर दीजिए। मैंने देखा है कि जब लोग तैयारी करते हैं घर के कोई काम नहीं करते, घर वाले भी कहते हुए डरते हैं कि भैया अगर इसको काम कर दे तो इसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कहीं गुस्सा ना हो जाए, चिड़चिड़ाने लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया और मैं देर तक नहीं पढ़ पाया। दोस्तों, इस मानसिक स्थिति से उबरिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप अगर कोचिंग क्लास में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं तो अपनी मम्मी से पूछ करके जाइए कि मम्मी मार्केट से आते समय कुछ लाना है क्या, और लेकर के आइए, ऐसी क्या बात हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और आप आईएएस अफसर बनना चाह रहे हैं तो किस लिए बनना चाह रहे हैं? फूलों की सेज पर सोने के लिए किस लिए बनना चाह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो लेना चाह रहे हैं, सोच करके देखिए और क्या करना चाह रहे हैं आप। तो अगर आप उन छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी से लेने की अपनी आदत नहीं बनाएंगे तो क्या लगता है कि आप अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे? दोस्तों, याद रखिए, जो ताकत है, दिमागी ताकत, अधिकार से नहीं आते हैं। ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर आपको अधिकार दे दिए जाए, पावर्स दे दिए जाए तो आप में बहुत ज्यादा मानसिक ताकत आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यार मेरे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। गांधी जी के पास क्या अधिकार थे? कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन ताकत आप देखते हैं। मतलब इन सब चीजों पर थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो सही नहीं है लेकिन हमें सही जैसी लगती हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। तो पीयूष, मैं तुम्हारे प्रति भी अपने सभी मित्रों की ओर से बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं और तुमने जो ये प्रमाण दिया है कि मानसिक मजबूती तुम्हारे अंदर रही, ये एक बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि तुम्हारी इस मानसिक मजबूती में, जैसा कि तुमने स्वीकार किया है, एकेडमी का कुछ योगदान रहा ही है। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के इस पार्ट के बाद अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, न्यूज में 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पहला है हमारे पीएम के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री अफ्रीका के जो 4 देशों की यात्रा में है, तो पहली यात्रा उनकी मोजाम्बिक की पूरी हो गई है और इसके बाद फिर वो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं। ये 2 खबरें आपने सुनी। फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आप न्यूज नहीं सुनते हैं, चलिए मेरा डेली ऑडियो गाइडेंस भी नहीं सुनते हैं, चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको अफ्रीका के बारे में कुछ जानने समझने को नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए सिर्फ अखबार तक सीमित रहते हैं, मैगजीन्स तक सीमित रहते हैं, तो आप देखेंगे कि अखबारों में भी अफ्रीका पर आना शुरू हो गया है, आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, एडिटोरियल लिखे जाने शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी की जब विजिट पूरी हो जाएगी तब भी पूरे विश्लेषण अखबारों में आएंगे। और अखबारों का जब दौर खत्म हो जाएगा तो जब मंथली मैगजीन्स आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लेंगे तो बट नेचुरल है कि उसमें भी ये टॉपिक होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, आपकी ये कमी जो है वहां पूरी हो गई। मित्रों, ये भी एक पढ़ने का तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, और खासकर अगर हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिहाज से देखें तो, क्योंकि मित्रों, जो सिविल सर्विस में जो आप आंसर लिखेंगे, जो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें अब सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि जब तक आपके दिमाग में उन घटनाओं के बारे में एक कुकिंग सी नहीं हो गई है, मतलब वो चीजें जैसे कि आप एक खिचड़ी बना रहे हैं तो आपने कुकर में सारी चीजें डाल दी, जितनी भी चीजें डालनी है, दाल डाल दिए, चावल डाल दिए और सब्जी वब्जी जो भी डालना है डाल दिया और उसको चढ़ा दिया, अब गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और अब वो पक रहा है, उसने सीटी मारी और आपने गैस बंद कर दी, तो कुक होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों सवाल यह है कि ये कुकिंग होगी कैसे, कैसे कुकिंग होगी? देखिए अगर आप सिर्फ अखबार पर निर्भर रहेंगे तो काफी कुछ मात्रा कुकिंग की हो सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ मैगजीन पर निर्भर रहेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप मैगजीन, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज की बात है, मैगजीन से पहले आप अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार से पहले आप न्यूज सुन रहे हैं, तो दोस्तों न्यूज तो होनी ही चाहिए। मैं डेली ऑडियो गाइडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो डेली ऑडियो गाइडेंस में आपको न्यूज की एनालिसिस देता हूं, ये कंपलसरी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हां लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इसे भी सुनेंगे तो वो चीज आपकी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे आप देखिए कि कोई भी जब अपनी छत ढालते हैं तो छत ढालने के बाद ढल जाती है और सीमेंट वगैरह सब लग जाती है, फिर उसके ऊपर बोरियां बिछा करके और उसे बहुत कुछ समय तक पानी से तर किया जाता है, लगातार पानी डाला जाता है उसमें ताकि वो मजबूत हो जाए, वो जो छत है वो सीमेंट बहुत अच्छे तरीके से पकड़ ले। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है वो आपके पानी छिड़कने का काम करके आपकी छत को मजबूत बनाएगा, और नो डाउट कि प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें एक तरह से गाइडेंस का काम तो ये करती है, लेकिन ये डेफिनेटली ये आपकी च्वाइस है। किंतु न्यूज़पेपर तो आपकी च्वाइस नहीं है अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये चीजें आपको कुक करने में मदद करेंगी, राइट। जैसे आप जब न्यूज सुन रहे थे दो फ्रेंड्स, तो आप न्यूज में देखिए प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट है कि जो मोजाम्बिक है भारत के लिए अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। ये देखिए स्टेटमेंट है, मोजाम्बिक भारत के लिए अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। अब मित्रों उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, न्यूज में भी आ गया, अखबारों में भी हो सकता है किसी ने मेंशन कर दिया हो प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये स्टेटमेंट ज्यों का त्यों सिविल सर्विस में पूछ लिया गया और कहा गया कि सिद्ध कीजिए, तब क्या सच में आपको लगना चाहिए कि कुछ अजीब सा प्रश्न पूछ लिया गया है, या आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ यार ये बड़ा जोरदार प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है। अब आप अगर आपने न्यूज सुन ली तो अब आपको सोचना चाहिए कि यार प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी तो कैसे कह दी। देखिए मैं जानता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट सोचने की तकलीफ नहीं करते हैं, उनको लगता है यार जब परीक्षा में आएगा तब सोच लेंगे, वो फिर से एक अलग किस्म का भ्रम पाले हुए हैं। थोड़ा सा वक्त लगाइए, सोचिए, क्योंकि जो प्रायोरिटीज वाली जो चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको अभी ही सोचने से मिलेंगी। अगर आप इसको कल सोचेंगे तो आज की चीजें उसमें से गायब हो चुकी होंगी, अगर आज की चीजों को सोचने में आप शामिल कर लेंगे तो ये चीज हमेशा की आपकी हो जाएंगी। जैसे न्यूज में ही आपने एक और स्टेटमेंट सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जहां 54 कंट्रीज हैं शायद, भारत का जो 1/4 इन्वेस्टमेंट है, 25% इन्वेस्टमेंट सिर्फ मोजाम्बिक में है, मतलब 54 देशों में केवल 2% होना चाहिए था, अगर हम उसको डिवाइड कर दें 108% हो जाएगा फिर, तो केवल मोजाम्बिक में 25% है, एक चौथाई इन्वेस्टमेंट। तो भारत के लिए आप कल्पना करके देखिए कि मोजाम्बिक कितना इंपॉर्टेंट देश है, तो उसको उन्होंने प्रवेश द्वार के लिए एक पॉइंट आपको मिल गया। फिर आप मैप पर चले जाइए, देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम हिंद महासागर की तरफ से चले, भारत से अगर हम यात्रा करें, इसके बारे में मैं जानबूझ करके आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं कि कुछ तो आप कम से कम अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिए, अगर हम लोगों ने मानसिक मजबूती की बात की है तो, क्योंकि मानसिक मजबूती तो बिना किए नहीं आएगा, आप सब चीजें दूसरों पर डालते चले जाएंगे तो कभी मानसिक मजबूती नहीं आएगी। तो आप देखिए कि वो कहां स्थित है, तो हो सकता है कि आपको एक पॉइंट और मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैप आपको देखना ही है। प्रधानमंत्री अभी जहां जहां जा रहे हैं उन सब की लोकेशन आपको अफ्रीका महाद्वीप में लोकेट करनी ही चाहिए, और वो आपके दिमाग में बस जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। मित्रों फिर न्यूज में जो दूसरी चीजें थी वो आपको मालूम ही है, दाल के बारे में मोजाम्बिक से जो समझौता हुआ है वो इम्पोर्टेंट था, उस पर हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं। फिर न्यूज में आपने ये भी देखा कि सुना कि प्राइम मिनिस्टर फिर अब रात में उसी कल जो है वो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं, और दक्षिण अफ्रीका में ठीक है अब जो भी चीजें होंगी उसमें कुछ बातें बताई कि इन पर समझौता होना है, होने के बाद फिर से वो न्यूज में आएंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप एक ही चीज को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। अब मोजाम्बिक और दाल आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं, निकालना भी चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि प्री में ही पूछ लिया गया कि भारत अफ्रीका के किस देश से दाल उत्पादन करके और आयात करने जा रहा है। देखिए मोजाम्बिक में भी भारत ही दाल का उत्पादन करेगा, है ना, उनको सारी वो टेक्नोलॉजी देगा, सब कुछ करेगा, और फिर जो उनका दाल उत्पादित होगा वो भारत आयात करेगा। तो अब मोजाम्बिक आप भूलेंगे नहीं, हो सकता है आप वैसे भूल जाए, लेकिन ऑप्शन में तुरंत देख करके आप उस पर निशान लगा देंगे तो आपके लिए तो वो प्रश्न सरल हो जाएगा, लेकिन जो न्यूज से नहीं जुड़ा हुआ है उसके लिए तो ये प्रश्न बहुत कठिन होगा, क्योंकि न्यूज में कौन सी चीजें रिपीट की जा रही, वही चीजें रिपीट की जा रही है जो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण लग रही है। फिर दक्षिण अफ्रीका की बात है मित्रों, दक्षिण अफ्रीका में अभी न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वही थी कि आपको मालूम है कि भारत को जो न्यूक्लियर एनएसजी का जो मेंबर नहीं बन पाया, भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं बन पाया, उसके कुछ देशों ने आपत्ति की थी, जिसमें चीन का तो वेल नोन है, चीन के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि अखबारों में काफी कुछ लिखा गया, आर्टिकल्स तक आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बारे में उतना अलग से नहीं लिखा गया, बस नाम आ जाता था कि इन इन देशों ने विरोध किया तो उसमें दक्षिण अफ्रीका का भी नाम आ जाता था। अब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, बातचीत होगी, देखिए शायद दक्षिण अफ्रीका तैयार हो जाए, क्या होता है वो आगे की बात है। यानी कि अभी हमारे पास दक्षिण अफ्रीका से जो बातचीत करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि भारत का वो विरोध न करे, खासकर एनएसजी के लिए, तो उस दक्षिण अफ्रीका के लिए आपको एक फैक्ट पता लग गया। तो इस तरीके से अब वो जो आगे और जिन देशों में जाएंगे उससे आपको फैक्ट पता लगता चला जाएगा। इस बीच आपको एडिटोरियल कमेंट भी पढ़ने को मिल रहे हैं, एडिटोरियल पर पेज पर छपे हुए आर्टिकल भी पढ़ने को मिल रहे हैं, वो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप देखेंगे इतना दक्षिण अफ्रीका की तैयारी पर क्वेश्चन की तैयारी के लिए सफिशियंट है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं। ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए, जो थोड़े से हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने के चक्कर में पड़िए, उन पर ज्यादा से ज्यादा कमांड बनाने के चक्कर में पड़िए, राइट। फ्रेंड, जो दूसरी खबर थी सेकेंड नंबर की वो थी जाकिर नाइक जी को लेकर के, जो इस्लाम के बारे में व्याख्या करते हैं, धर्म गुरु जैसे हैं कह लीजिए, वो चैनल्स पर उनके आते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और खासकर अभी बांग्लादेश में जो आतंकवादी जो घटना घटी थी, जब उन युवाओं में से एक ने किसी ने ये बताया कि वो जो जाकिर नाइक है उनके जो वक्तव्य होते हैं और उनके जो व्याख्यान होते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और ये कहा जाता है कि बंबई में जो हमला हुआ था मुंबई में उससे पहले नाइक का एक इस तरह का उपदेश वाला या बयान आया था कि सब जो भी इस्लाम के विरोधी हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए, इस तरह का वक्तव्य आपने न्यूज में भी सुना, अखबारों में भी आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वक्तव्य मुझे ध्यान नहीं है तो इसीलिए मुझे दोहराना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के था कि उसे उकसाने वाली गतिविधि मानी गई। तो अब बांग्लादेश ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप जरा सा जांच कीजिए कि ऐसा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अब भारत बांग्लादेश के रिक्वेस्ट पर अब उनके जो इससे पहले के जो फुटेज हैं, जो लेक्चर्स वगैरह हैं, व्याख्यान, अब वो देख रहा है कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। ये अभी मुंबई में रहते हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नाम और एक घटना है, खासकर इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जुड़ी है, राष्ट्र के खिलाफ किए जाने वाले विद्रोह की बात भी जुड़ी हुई है, आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने की बात भी जुड़ी हुई है, धर्म और आतंकवाद के रिलेशंस का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस एक बात को कई तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। मित्रों, जो अगली जो महत्वपूर्ण बात थी वो खासकर नमामि गंगे को लेकर के थी, आपने सुना उसमें न्यूज में ही जो कुछ कंटेंट दिए गए थे कि 250 स्थानों पर नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है और जो लगभग 1500 करोड़ रुपए की है, न्यूज की बात मैं बता रहा हूं, और ये माना गया है कि ये परियोजना 2018 तक लगभग पूरी हो जाएगी। फिर आपने देखा कि जो मंत्री हैं गंगा सफाई अभियान के जो मंत्री हैं उमा भारती जी, उनका स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कुछ चीजें गिनाई थी कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। मित्र, जब हम सामान्य तौर पर सुनते हैं ना कि क्या क्या करने जा रहे हैं तो ये बड़ी आसान सी चीजें लगती हैं, लेकिन मैं आपको यहां थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा कि उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दें, थोड़ा सा रुकें और फिर इत्मीनान से उसे सुने और दिमाग में लेकर के आए। जैसे उन्होंने कहा कि पेड़ लगाए जाएंगे, पर्यावरण से संबंधित है, वर्षा से संबंधित है। फिर उन्होंने कहा कि घाट बनाए जाएंगे, तो जब जगह जगह पर घाट बनाए जाएंगे तो बट नेचुरल की मिट्टी बह करके उसमें नहीं आएगी, लोग आते जाते हैं तो उनको सुविधा होगी, घाट बनाए जाएंगे। नालों की सफाई कराई जाएगी, नाले आकर के गंगा अभियान में गंगा के पानी में मिलते हैं तो उनकी सफाई करा दी जाएगी ताकि गंदा पानी उसमें न डले। फिर जीव जंतुओं का विकास किया जाएगा। तो इस तरह की उन्होंने कुछ चीजें गिनाई, राइट। तो आपको इन चीजों पर ना फोकस करना चाहिए। हम जनरली इन चीजों पर फोकस नहीं करते, हमें लगता है कि ठीक है सामान्य सी चीजें हैं, बात हो गई, बात खत्म हो गई। तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2015 का जो जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर है उसमें नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन को लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैं यहां क्वेश्चन दोहरा देता हूं। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन सी प्रमात्रा छलांगे क्रमिक योगदानों की अपेक्षा ज्यादा सहायक हो सकती हैं। इंग्लिश में है दोस्तों, डिस्कस द नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम्स एंड कॉज ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्कीम व्हिच क्वांटम लिप्स कैन हेल्प प्रिजर्व द रिवर गंगा बेटर देन इंक्रीमेंटल इनपुट्स। अब आप देखिए कि इसमें कुछ वो सब नहीं पूछा है कि क्या उद्देश्य है और क्या क्या किए जा रहे हैं, वो तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज की जाए कि अचानक उसमें छलांग लग जाए। मतलब एक तो क्या है ना कि स्लोली गंगा की सफाई हो, और दूसरा इसमें कह रहा है कि नहीं बहुत तेजी से सब कुछ हो जाए, वो कौन से कदम हो सकते हैं। तो मित्रों ये तीसरी खबर थी। तो दोस्तों ये AIR न्यूज के बारे में थी। अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर। आज बहुत सी प्रेस क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन सारी के सारी प्रेस क्लिपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स है। अफ्रीका के बारे में है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने नई एजुकेशन आने वाली है, सॉरी अभी तो नीति बनी नहीं है, उस पर अभी बहस चल रही है, उसके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। बृहस्पति पर जो है ना जूनो यान पहुंच गया है, बृहस्पति की कक्षा में जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस पर आर्टिकल, उस पर एडिटोरियल कमेंट हैं। मोजाम्बिक पर है ही दाल को लेकर के, और खासकर चेन्नई हाई कोर्ट ने अभी एक जो राइटर रहे हैं उन राइटर की किताब, तमिल राइटर जो रहे हैं उनकी किताब पर एक जातिगत समुदाय ने विरोध व्यक्त किए, विरोध प्रकट किया था, तो उस पर मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट का जो जजमेंट है कि वो राइटर के ऊपर छोड़ दीजिए, और अगर आपको किताब अच्छी नहीं लग रही तो आप मत पढ़िए, लेकिन उस पर प्रतिबंध इस तरीके से नहीं लगाया जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, तो उस पर एडिटोरियल कमेंट है, तो आप इन सबको देख लेंगे। तो मित्रों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। एक ईमेल है शिवम त्रिपाठी का, उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा मेल लिखा है कि वो जब जम्मू गए तो वहां जो आर्मी के कैंप होते हैं, एक दिन वो वहां चले गए और वहां के लोगों को डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में उन्होंने बताया, तो उनके जो हेड थे उनको उन्होंने उसने शिवम ने सुनाया भी, और लाइफ मैनेजमेंट वाला हिस्सा उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो लाइफ मैनेजमेंट वाला हिस्सा है उनके सभी जवानों को रोज सुनवाया जाए। शिवम ये आपने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह का मेल लगभग रंजना यादव का है, जो बलिया यूपी से हैं। इन्होंने लिखा है कि ये भी अपने दोस्तों से या जो भी परिचित होते हैं उन्हें डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बताती हैं। तो रंजना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वरुण सहरावत मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, स्नेहा कुमारी भागलपुर बिहार से, ओम प्रकाश कुमावत ओपी जाट अजमेर से, इम्तियाज हुसैन आरा बिहार से, साहिल कृष्णन अच्छेलाल चौहान कंचनपुर यूपी से, नीरज कुमार मीना अजमेर से, अरशद अयूब पुष्पेंदु प्रभात न्यू दिल्ली से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, विजेता सेन दर्पण भारद्वाज आगरा से, कपिल कुमार सिंह पटना बिहार से, और अनुराधा सोनी, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। ये छुट्टी के दो दिन आपके बड़े ऊर्जावान हों और बड़े उत्साहजनक हों, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। 2 दिन बाद फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।